surgió me.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल और असम में बहुस्तरीय कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं की शुरुआत पर, जिनमें 5 अमृत भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉ केजी सुरेश। डॉ सुरेश, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद, नमस्कार।
पहले हम सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री के असम दौरे के बारे में है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना 2 दिवसीय असम दौरा समाप्त किया। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजना के आधारशिला रखी 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री शनिवार शाम पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी पहुंचे और हवाई अड्डे से गुवाहाटी के अर्जुन भगतसर बरुआ खेल परिसर तक सड़क यात्रा की। खेल परिसर में आयोजित बोरो समुदाय के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागरुम्बा दोहो में प्रधानमंत्री ने भाग लिया, जहां बोरो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने बागरुम्बा नृत्य प्रदर्शन किया। आज प्रधानमंत्री ने कलियाबर में मौसंदा पथार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और 6,957 करोड़ रुपए की लागत से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के कलियाबर नुमलीगढ़ खंड के 4 लेन उन्नयन के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलियाबर में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
हमने ये रिपोर्ट सुनी डॉक्टर सुरेश, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल और असम में बहुस्तरीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं अभी शुरू हो रही हैं, शुरू कर दी गई हैं, उनका राज्य की अर्थव्यवस्था, व्यापार और पूर्वोत्तर के साथ एकीकरण पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव देखते हैं आप?
देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पिछले 11 साल में हमने जो देखा कि जितने प्रधानमंत्री अभी तक उत्तर पूर्व में जिन्होंने यात्राएं की, उससे ज्यादा यात्राएं मात्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उनका जो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत किस तरीके से उत्तर पूर्व का जो विकास हुआ है वो अप्रत्याशित है। चाहे वो सड़कें हो, रेल हो, टेलीकॉम हो, औद्योगिकरण हो, मैं स्वयं उत्तर पूर्व कई बार जा चुका हूं और मैं देखता हूं वो विकास। लेकिन इस विकास पर प्रधानमंत्री का एक विशेष ध्यान रहता है, वो है कि विकास भी विरासत भी। तो विरासत को उन्होंने साथ में ही महत्व दिया है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि इस बार की जो असम यात्रा है, वहां ये विरासत क्या है, मात्र सांस्कृतिक विरासत नहीं है जहां उन्होंने 10,000 कलाकारों को प्रोत्साहित किया, वह नहीं है, अपितु हमारे जो पर्यावरण, हमारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा, उसमें जो है किस तरीके से एलिवेटेड कॉरिडोर को उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने आधारशिला रखी। मैं समझता हूं कि उससे जो है हमारा पर्यावरण, पूरा दुनिया आज काजीरंगा की तरफ जा रही है, वहां के जो है वन हॉर्न राइनोसेरस को देखने के लिए, टाइगर को, एलिफेंट को, लेकिन उनको विकास के साथ साथ उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, वो पर्यावरण भी बचा रहे क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन साथ साथ जो है प्रदेश का जो है विकास भी हो। इस तरह का कॉरिडोर जो तिनसुकिया और ये सड़क के मार्ग पर फ्रेट कॉरिडोर को भी आपने जो है मजबूत किया, तो दूसरी तरफ रेल की जितने भी अपने, चाहे वो अमृत भारत हो, चाहे वो वंदे भारत पहला स्लीपर ट्रेन को उन्होंने अपने कोलकाता में उद्घाटन किया, कोलकाता और कामाख्या के बीच में उन्होंने जैसे कहा कि काली की भूमि से जो है कामाख्या देवी की भूमि को जोड़ने का जो काम किया है। और एक बात यहां जरूर जिक्र करूंगा, वो ये है कि देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि जो विपक्षी दलों द्वारा जो सत्ता में जिन राज्यों में है उनसे भेदभाव किया जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भाव है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कभी भी जो है कभी भेदभाव नहीं किया है विकास में। आज ये कोलकाता से भी जो ट्रेनें जा रही हैं उसमें असम को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर ट्रेनें जो है दक्षिण भारत में जो है आपके तमिलनाडु और कर्नाटक, जो दोनों ही विपक्ष पार्टियों का जो है सत्ताधारी दल है वहां, तो ये जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत जो है सभी राज्यों को बराबर विकास के जो है भागीदार बनाने का जो प्रयास है ये सराहनीय है। और मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री का ये उत्तर पूर्व में जो लगातार उनका जो फोकस है, उस कारण मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि आज जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम के साथ जो है, जो बहुत पिछड़ा रह गया था उत्तर पूर्व, वो आज जुड़ गया है और आज उत्तर पूर्व में भी उतना ही विकास हो रहा है जितना शेष भारत में हो रहा है।
जी, और आपने अमृत भारत का भी उल्लेख किया था। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी से हमारे संवाददाता क्या बता रहे हैं अमृत भारत ट्रेनों के संबंध में।
अमृत भारत एक्सप्रेस एक किफायती और आधुनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो लोगों को लंबी दूरी की सस्ती और आरामदायक यात्रा उपलब्ध करा रहा है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में 34 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और आज 5 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत होने से इनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इन दो दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने असम से 2 और पश्चिम बंगाल से 7 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। असम और पश्चिम बंगाल से चलने वाली ये नई ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को भी जोड़ती है। अमृत भारत एक्सप्रेस एक नॉन एसी स्लीपर ट्रेन है जिसका किराया करीब 500 रुपए प्रति 1000 किलोमीटर है, जो आम लोगों के लिए किफायती है। इन ट्रेनों में आरामदायक सीटें, आधुनिक शौचालय, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, डिजिटल सूचना प्रणाली और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अमृत भारत ट्रेन में आमतौर पर 20 से 22 कोच होती है। ये ट्रेन खास तौर पर त्योहारों के समय और अधिक यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को सुलभ और आरामदायक यात्रा मिल सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, न्यू जलपाईगुड़ी।
डॉक्टर सुरेश, ये अमृत भारत ट्रेनों सहित ये आधुनिक रेल परियोजनाएं अभी पश्चिम बंगाल से और असम से जो शुरू हो रही हैं, वो कैसे हमारे ग्रामीण और शहरी डिवाइड को खत्म करेंगी और कैसे समावेशी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाएंगी?
एक समुचित विकास की जो एक दृष्टि है प्रधानमंत्री की, जहां एक तरफ वंदे भारत जैसे ट्रेन है, चाहे वो स्पीड के मुकाबले हो, सुविधाओं के मुकाबले हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा जब कम दे रहे हैं तो जो है उनके लिए सुविधाएं कम हो। तो इसलिए भले ये ट्रेन नॉन एसी है, लेकिन 500 रुपए यानी कि 1000 किलोमीटर की यात्रा पर 500 रुपए के हिसाब से देकर आपको वह सभी एक आरामदायक यात्रा, क्योंकि लोग जब अपने गांव से शहर की तरफ जाते हैं या शहर से गांव की तरफ, वो आराम से जाना चाहते हैं। दिल्ली में भी आप देखते हैं छठ के समय में वगैरह जो भीड़ लगी रहती है, तो ये एक प्रयास है कि आरामदायक तरीके से लोग अपने घरों पर पहुंच पाए, शहरों में पहुंच पाए। और ये सबके लिए है, इसमें कामकाजी लोग भी जा सकते हैं, जो आपके जो किसान भी जा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत को गांवों से शहरों को जोड़ना, पिछड़े क्षेत्रों को जो है, या मैं उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहूंगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जो है, जो महत्वाकांक्षी जो जिले हैं, उनको जो है किस तरीके से हम उनको जोड़ सकते हैं शहरों के साथ, ताकि वो आवागाही भी बनी रहे, तो दूसरी तरफ जो है उनमें सुविधाओं की कमी ना हो, उनमें जो है चाहे वो मोबाइल फोन के चार्जिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो अच्छे आरामदायक सीट की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, तो उसमें इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये जो एक अमृत भारत का भी जो एक जाल है, ये पूरे देश में जो है इसको फैला दिया जाएगा, और अभी शुरू हुआ है बंगाल और असम के संदर्भ में, और आगे चलकर जो है, और अच्छी बात है कि पूर्व से एक नई शुरुआत हो रही है जो पूरे देश में जिसका विस्तार होगा। तो मैं समझता हूं कि हम सब इंतजार कर रहे हैं इसके सफलता की कहानी सुनने के लिए।
असम में तो काफी समय से कई परियोजनाएं चल रही हैं पहले भी, और अभी पश्चिम बंगाल में जो शुरुआत हो रही है, जिस तरह की परियोजनाओं की बात अभी हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, उससे वहां के आदिवासी, पिछड़े और ग्रामीण समुदायों के लिए, अगर हम देखें जो हमारे सरकार की जो परियोजनाएं स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या महिला सशक्तिकरण, इन योजनाओं के माध्यम से वहां कैसे उद्यमिता के नए दरवाजे खुलेंगे?
हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों से आयुष्मान भारत जैसे कुछ योजनाओं को वहां लागू नहीं किया जा सका, लेकिन प्रधानमंत्री हार नहीं माने हैं। भारत सरकार ने जो है बंगाल को अपने हाल पर नहीं छोड़ा है, वहां जो है जो भी यथासंभव है उसको करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने जो है बहुत बड़ा एक व्यापक विकास का एक रोड मैप उन्होंने वहां आज उद्घाटन किया, और उसके चलते मैं समझता हूं कि वहां चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो रोड की यात्रा हो, चाहे वो लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब दिलाने की बात हो। देखिए ये भी है, आप आज नए पोर्ट्स खड़ा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उस पोर्ट से जो है लॉजिस्टिक्स में लोगों को जॉब मिलेगा, आपके जो है ट्रांसपोर्ट में लोगों को जॉब मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार प्रदान करने के बहुत सारे अवसर जो है वहां इससे खुल जाता है। और याद रखिए, जैसे जैसे ढांचागत विस्तार होता है, विकास होता है, अधोसंरचना का विकास होता है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ट्रेन हो या इवन वायु जलमार्ग से भी उन्होंने शुरू किया है जो लोकार्पण किया है उसमें, उससे क्या होता है आपका जो कैटमरन का जिसका जो उद्घाटन किया है जिसके चलते 50 सीटर का कैटमरन है उससे जो है लोगों को जल के माध्यम से वो जो है जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। और ये तीनों मार्गों का जो विस्तार है इससे निश्चित ही औद्योगिकरण के रास्ते खुल जाते हैं, विकास जैसे ही होता है तो नए उद्योग के मौका मिलता है, बेटर ट्रांसपोर्ट होने में जो खेती का जो सामग्री है वो जो है आपके शहरों तक पहुंच सकता है, तो उसका फायदा निश्चित ही हमारे किसानों को भी मिलेगा, हमारे युवाओं को भी मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। तो मैं समझता हूं कि विकास के जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो सभी को मिलकर इसमें जो है प्रतिभागिता लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे देश का विकास होता है और जब हमारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उस दिशा में जो है सभी को कंधे से कंधा मिलाकर जो है जाने की जरूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री बगैर किसी भेदभाव के सभी राज्यों को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास के उस ध्येय वाक्य को लेकर वो आगे चल रहे हैं।
असम और पश्चिम बंगाल दोनों के संदर्भ में अगर हम देखें तो बंगाल में जूट है और चाय दोनों है, असम के लिए चाय इम्पोर्टेंट है, फिर दोनों में ही अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफी संभावनाएं हैं, उनमें निवेश आकर्षित करने में और रोजगार को वृद्धि देने में ये जो नए कदम है अभी जो कनेक्टिविटी की बात
बिल्कुल
है, थोड़ा सा और हमारे श्रोताओं को बताना।
देखिए जैसे अब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है रेल ट्रैक का जो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में शामिल है, आप देखते हैं कि रेलों की गति बढ़ेगी, फ्रेट जो है जल्दी से जल्दी जो है मालगाड़ियां पहुंचेंगी, तो इसका लाभ निश्चित ही कोई भी उद्योगपति जो है चाहेगा कि भाई विकास उसका उसके क्षेत्र से अगर वो दूर दराज के क्षेत्र में अगर उसको मौका मिलता है वो अगर निवेश करता है तो वो तो एक ही चीज चाहेगा कि उसके सामग्री के आने जाने में उसके जो भी रॉ मटेरियल है वो आए और उसका जो प्रोसेस्ड गुड है वो जो है शहरों तक पहुंचे, उसके लिए चाहे वो रेल की सुविधा हो सड़क की सुविधा हो वो होना बहुत जरूरी है। तो ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूं कि सबसे पहला प्री कंडीशन जिसको कहते हैं, इसके बगैर तो असंभव है। तो इसलिए ये रोजगार का सबसे पहला मापदंड ये है कि क्या अधोसंरचना उस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वहां निवेश पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो है उस क्षेत्र का विकास हो, चाहे बाईपास हो, हाईवे हो, फ्लाईओवर हो, फुट ओवर ब्रिजेस हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, तो इसी दिशा में जो है और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, गुड्स का जो है ट्रैफिक हो, तो मैं समझता हूं कि उस दिशा में बहुत बड़ा कदम इस बार प्रधानमंत्री द्वारा जिन प्रोजेक्ट्स का और लगातार वे जाते रहे हैं, पिछले हफ्ते ही उन्होंने जो है अगर आप देखेंगे गुवाहाटी में जाके नया टर्मिनल लचित बड़फुकन एयरपोर्ट का जो है उन्होंने शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही काजीरंगा के संदर्भ में उसमें आप देखेंगे कि वहां के लोगों का एक तो संतुलन पर्यावरण और वन्य जीव और मनुष्य के बीच में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं उसको कम करना है, तो दूसरी तरफ वहां की लोक कलाएं लोक शिल्प जो ट्राइबल आर्ट्स हैं इनको भी जो है जब विकास का जब जैसे ही दरवाजे खुलते हैं तो उसका भी विस्तार होता है
और
उनका
भी जो है वो पूरे देश तक पहुंचता है।
तो ये एक आमूल चूल जिसे कहते हैं परिवर्तन और विकास की दिशा में हम लोग जा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर दोनों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं, जो तो ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये पश्चिम बंगाल को और सिर्फ असम को ही नहीं बल्कि देखें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश भूटान म्यांमार के साथ व्यापारिक हब बनाकर एक पूर्वी एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में भी कुछ भूमिका निभा सकते
हैं। निश्चित ही देखिए जब हमने लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ गए तो पहला हमारा एक ये था कि हमें उत्तर पूर्व को एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना है, उसी मार्ग से जो है चाहे वो विद्यार्थियों का आदान प्रदान हो, चाहे वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में गुवाहाटी को तैयार करना हो, उसको जो है आने वाले दिनों में दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा हब बन के हमारे जितने भी उत्तर पूर्व के क्षेत्र है वो उभरे और उत्तर पूर्व के क्षेत्र को भी जो है जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर की जरूरत है, वहां के स्थानीय जो सामग्री है देखिए वहां के संस्कृतियों में भी काफी समानताएं हैं, तो वहां के लोगों के साथ आदान प्रदान भी हो, पीपल टू पीपल रिलेशन भी मजबूत हो, तो इन सबको भी दृष्टिगत रखे हुए, क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखेंगे या दक्षिण पूर्व एशिया को देखेंगे उसमें हमारे संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है जो हजारों सालों से हमारा उनके साथ संपर्क रहा है, हमारे जो पूर्वी तट है तटीय क्षेत्र है और हमारा उत्तर पूर्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहा है, उसको मजबूत करने की दिशा में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है।
तो श्रोताओं जैसा कि अभी आपने इस चर्चा में सुना, पश्चिम बंगाल और असम में शुरू की गई कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाएं न केवल यात्रा को सुगम बनाएंगी बल्कि आर्थिक अवसरों पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण को भी नई शक्ति देंगी। डॉ के जी सुरेश अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में